ओम शांति। 8 तारीख की अव्यक्त मुरली, रविवार की, 26 जनवरी 1983, गणतंत्र दिवस, दाता के बच्चे बन क्या करो, दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग दो। तो आज हम इस मुरली को रिवाइज करेंगे, संडे 8 तारीख अक्टूबर मास 2017, रिवीजन मुरली 26 जनवरी 1983, दाता के बच्चे बन सर्व को सहयोग दो। एक यहूदी कहानी है जिसमें एक यहूदी धर्म गुरु रात में एक स्वप्न देखता है। वो स्वप्न में देखता है कि दूर राजधानी में एक पुल है, उस पुल के नीचे एक नदी बह रही है और उस पुल के पास एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है। तो वो जब सुबह उठता है तो उसको लगता है ये तो स्वप्न था, इसके लिए उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। परंतु दूसरे दिन फिर उठता है, दूसरे दिन जब सोता है तो फिर वही स्वप्न देखता है, वही राजधानी, वही पुल, वही नदी और वहां पर एक पेड़ और पेड़ के नीचे बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है। वो ये भी देखता है कौन कौन सा खजाना है, हीरे, मोती, माणिक। दूसरे दिन उसे आश्चर्य लगता है कि एक ही स्वप्न दो बार, फिर भी सोचता है कभी कभार हो सकता है। परंतु तीसरे दिन तीसरी रात वही स्वप्न देखता है, वही पुल, वही राजधानी, वही नदी और वो पेड़ और उस पेड़ के नीचे खजाना गड़ा हुआ है। तब उसे लगता है कि नहीं, कुछ तो है, एक ही स्वप्न तीर मार कैसे आ सकता है, इसलिए वो निकल पड़ता है। वो जहां रहता था वह छोटा सा गांव था और वो राजधानी की तरफ आता है और राजधानी में जैसे ही पहुंचता है देखता है कि ये तो वही नदी है जो मैंने स्वप्न में देखी थी और वहां पर पुल भी है। तब उसे लगता है कि हो ना हो, ये जो स्वप्न मैंने देखा शायद ये सही हो, और पुल पर चढ़ता है और वहां से देखता है कि वहां नदी किनारे वही वृक्ष है जो मैंने स्वप्न में देखा था। परंतु एक मुश्किल है, वहां पर एक सिपाही तैनात है और वो घूम रहा है वहां पर। तो उसे लगता है कि अब कैसे जाऊं, खजाना तो है उसी पेड़ के नीचे है जो स्वप्न में देखा था, परंतु सिपाही तो था नहीं, तो अब क्या करूं। तो वो थोड़ा टहलते रहता है पुल पर दिन भर, दूसरे दिन ऐसा ही करता है, तीसरे दिन भी ऐसा ही करता है, ये सोचकर कि ये सिपाही वहां से चला जाए और फिर मैं खजाना जो गड़ा हुआ है उसको खोदूं। परंतु सिपाही तो जाता है पर उसकी जगह दूसरा सिपाही आ जाता है, ड्यूटी चेंज। तो वो जो सिपाही होता है एक दिन तीसरे दिन उसको पूछ ही लेता है कि तुम क्यों यहां घूम रहे हो, क्या आत्महत्या करने का इरादा है, पुल पर घूम रहे हो, रोज देख रहा हूं 3 दिन से इसी पुल पर घूम रहे हो, क्या ख्याल है। तो यहूदी फकीर उससे कहता है, आपसे क्या छिपाना, मैंने एक स्वप्न देखा। परंतु इससे पहले कि वो स्वप्न बताए वो सिपाही कहता है कि पहले आप रुको, इससे पहले कि आप अपना स्वप्न बताओ मैं आपको अपना स्वप्न बताता हूं, मैंने भी 3 दिन से स्वप्न देखा है और मैंने देखा है कि यहां से फला फला दूरी पर एक गांव है और उस गांव का ये नाम है और उस गांव में ऐसा ऐसा एक मकान है और उस मकान में ऐसा ऐसा एक धर्म गुरु रहता है और ये स्वप्न मैं पिछले 3 रातों से देख रहा हूं और मैंने ये देखा है कि वो जो धर्म गुरु मैंने देखा वो शायद आप ही हो क्योंकि आपका ही चेहरा वैसा ही था। और वो धर्म गुरु कहता है कौन सा गांव, ये तो मेरा ही गांव है और उस धर्म गुरु का नाम क्या है, वो तो मेरा ही नाम है, और क्या देखा। तो वो सिपाही कहता है कि मैंने ये देखा कि आपका जो घर है, जो कुटिया जहां आप रहते हो, वहां जो खटिया है, उस खटिया के नीचे बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है। तो धर्म गुरु कहता है बस अब मैं जा रहा हूं, अब मैं यहां नहीं रुक सकता, और वो वहां से निकल जाता है और सीधा अपने गांव पहुंचता है, सीधा अपने घर पहुंचता है, अपनी खटिया के पास खटिया को हटाता है और उस जगह को खोदने लगता है और खोद कर पाता है कि ये खजाना तो यही है और उसको बहुत 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 खुशी हो जाती है। सबको बताता है कि ये मुझे यहाँ खजाना मिल गया, जिस खजाने को मैंने कहाँ देखा था, कहीं दूर है, वो दूर नहीं था, कहाँ था, मेरे ही घर में था और मेरे ही खटिया के नीचे गड़ा हुआ था, परंतु स्वप्न में उसने देखा था वो कहीं और है, खजाना कहीं और नहीं है, कहाँ गड़ा हुआ है, जहां हम है वही। झाड़ के नीचे था या ना था पता नहीं। हसीद नाम का एक यहूदी सूफी संत था, हसीद, वो हमेशा इस कथा को कहता था। ऐसा ही संदर्भ आता है अभी अभी पाश्चात्य जगत के पाउले कोहलो ने लिखी हुई किताब द अल्केमिस्ट, अल्केमिस्ट नाम की एक किताब लिखी गई है, उसमें उस किताब का जो मुख्य पात्र है सैंटियागो, वो भी ऐसे ही खजाने के बारे में, इजिप्ट के कोई पिरामिड है वहां पर खजाना गड़ा हुआ है, वो ऐसा सुनता है और वो सैंटियागो निकल पड़ता है। उसको कई लोग मिलते हैं, कभी राजा मिलता है, कभी वो अल्केमिस्ट मिलता है और वो बहुत सारी लंबी यात्रा करते हुए एक जगह पहुंचता है, वो पिरामिड में, इजिप्ट की पिरामिड, और वहां पर उसे कुछ कुछ मिलता है परंतु डाकू आते हैं और सब कुछ लूट ले जाते हैं और उसमें का एक डाकू उसको बताता है कि खजाना यहाँ नहीं है, खजाना तो वो वहां है उस गांव में, वहां जो एक खंडहर है, वहां जो एक चर्च है, वहां गड़ा हुआ है। और सैंटियागो को कहता है वो तो मेरा ही घर है, मैं वहीं तो पला बड़ा हूं। संडे की अव्यक्त मुरली, बाबा ने कहा है संसार की आत्माएं एक दिन ढूंढते ढूंढते यहां आएगी, जैसे कोई खजाना जमीन में गड़ा हुआ हो और वो अचानक किसी को मिल जाए, अचानक किसी को पता चल जाए उस खजाने के बारे में, तो वो कितना खुश होता है और फिर सबको बताते हैं कि हमको यहाँ खजाना मिला है। यह मधुबन भूमि आध्यात्मिक प्राप्तियों का खजाना है, ऐसा यह स्थान है। तो जो यहां रहने वाले हैं उनके लिए भी एक चीज यहां से सीखने जैसी है कि जो खजाना यहां गड़ा है, जिस खजाने पर हम रह रहे हैं, कहीं वो ये तो नहीं सोच रहे कि खजाना कहीं दूर है। सर्व प्राप्तियों का खजाना यहां है, इस भूमि को, इस स्थान को प्रसिद्ध करो, यह विशाल कार्य है, यह वो श्रेष्ठ कोना है, यह वो श्रेष्ठ ठिकाना है, यह वो श्रेष्ठ कोना जहां से सर्वात्माओं को जीव दान मिलेगा। जैसे मुरली की शुरुआत बाबा ने 2 उदाहरणों से की है, कौन से, जैसे जैसे बाप ऊंचते ऊंचे और उसका कर्तव्य वो निमित्त होकर करता है, विश्व कल्याण का, तुम भी ऊंचे से ऊंचे स्थान पर हो और तुम भी विश्व सेवा के इस कर्तव्य अर्थ निमित्त हो। जैसे बाप निमित्त है ऊंचते ऊंच, वैसे तुम भी ऊंचते ऊंच और इस काम के लिए, इस कर्तव्य के लिए तुम निमित्त हो। ये पहला उदाहरण। दूसरा, जैसे सबकी नजर उसकी तरफ जाती है जो ऊंचते ऊंच बाप है, वो जो ऊंचते ऊंच उसका जो स्थान है, वो जो रहने का उसका जो ठिकाना है, क्या है, कहाँ है, पता नहीं है। तद्धामम परमम मम, मेरा वह परम धाम है। न तद्भासयते सूर्य, न शशांक, न पावक। हे अर्जुन, मैं वहां रहता हूँ, मेरा वो स्थान है जहाँ न शशांक है, वहां न सूर्य है, न रवि है, न चंद्रमा। वो जो स्थान जहाँ ना, वहां ना कोई सितारे है, वो स्थान मेरा स्थान है। जैसे संसार की सभी आत्माओं की नजर उस स्थान की तरफ है, वैसे साकार में ऊंचते ऊंच जो स्थान है वो मधुबन है, और सभी की नजर कहाँ है, इस मधुबन में है। इसलिए तुम्हारा विशेष कार्य है, इसलिए तुम्हारा विशेष कर्तव्य है, इस भूमि को, इस स्थान को प्रत्यक्ष करो, इसको प्रसिद्ध करो, एडवर्टाइज करो, इस भूमि को। कहाँ है, कहाँ है, क्या कह रहे हैं वो लोग, वो स्थान कहाँ है, ढूंढ रहे हैं, जहां जाते ही ठिकाना मिल जाए, आत्मा शांत हो जाए, तृप्त हो जाए, भरपूर हो जाए। भटक रही है, स्थान, ठिकाना, कोना, श्रेष्ठ कोना। उनको बाबा ने कहा अनुभव का नेत्र प्राप्त होगा। क्या होगा? अनुभव के नेत्र से वो जानेगी कि यही वो स्थान है, यही वो जगह है जहां पर सर्व प्राप्ति हो सकती है। तो वो स्थान कौन सा है? मधुबन। सच्ची सच्ची गौशाला, सच्चा सच्चा हरिद्वार, बेहद का क्लब, बेहद का एयरपोर्ट, शीश महल, विशाल भवन, कुंज भवन, ज्ञान विज्ञान भवन, ग्लोबल हॉस्पिटल, ज्ञान सरोवर, ज्ञान मान सरोवर, सच्चा सच्चा दिलवाड़ा, सच्ची सच्ची, सच्चा सच्चा अचलगढ़, अचलगढ़, शांतिवन, त्रिलोक, ब्रह्मलोक, पीस पार्क, म्यूजियम, ब्रह्मा कुमारीज हेडक्वार्टर, ओम शांति भवन, आनंद सरोवर, शांति सरोवर, ओम शांति रिट्रीट सेंटर, तपोवन, कुंज भवन, निर्मल कुंज, शांतिवन याद है ना, त्रिलोक, ब्रह्मलोक, मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स, गॉडलीवुड स्टूडियो, सब क्या है, कहाँ है? यही मधुबन, यहीं पर संसार की सभी आत्माएं आएगी। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है कि संसार की आत्माएं आएगी और कहेगी, यदि हम अपना शीश भी निकाल कर दे दे तो भी यहां अंदर आने नहीं दिया जाएगा। मधुबन जादू की नगरी है, शीश महल बन जाएगा एक दिन। कोई भी विकारी इस महल में, इस भवन में प्रवेश नहीं कर सकेगा। परिवर्तन भूमि, तपस्या भूमि, कर्म भूमि, कर्मातीत भूमि, परमात्मा अवतरण भूमि, सबसे महान तीर्थ, टॉप की भूमि, मनोरंजन भूमि, मधुर भूमि, कितने नाम गिनाए हैं बाबा ने इस भूमि के। तो ऐसा ये स्थान बन जाएगा। इस मुरली में और एक चीज कही है, जैसे कोई लाइट हाउस होता है और बहुत ऊंचा होता है तो उसका, उसकी रोशनी दूर दूर तक जाती है, वैसे तुम भी जो इस मधुबन भूमि में रहने वाले हो, तुम भी क्या बन जाओ, लाइट हाउस बन जाओ। मुरली है 26 जनवरी की, 18 जनवरी को बाबा ने उद्घाटन किया है ओम शांति भवन का। हॉल तैयार है, तो क्या करो? अब क्या करो? हॉल में क्या क्या और इधर क्या क्या? हॉल तो तुमने कर दिया, हॉल तो बहुत अच्छा बना दिया विनोद भाई, अब क्या करना है? हाँ, चाल का चाल को क्या करो, क्या करो? एक तरफ है हॉल जो तैयार होकर खड़ा है और दूसरी तरफ है चाल। तो हॉल में क्या क्या और चाल में क्या क्या, जो जो हॉल में किया वो चाल में करो। हॉल बहुत अच्छा बनाया है तो अभी चाल को भी अच्छा बनाओ। हॉल ठीक तो चाल भी ठीक, हॉल बेहद का बनाया तो चाल भी कैसी हो? बेहद की। हॉल विशाल बनाया तो चाल भी कैसी हो? विशाल। तो जो जो हॉल के साथ किया है वो अब किसके साथ करो? चाल के साथ। हॉल का नक्शा तो चाल का नक्शा। हॉल में इंजीनियर और मजदूर, शब्द अच्छा नहीं है, श्रमिक ठीक है। वहां पर एक है इंजीनियर और दूसरा है श्रमिक वर्ग। इंजीनियर नक्शा बनाता है और वो साकार में लाता है, कार्य करता है, दोनों के सहयोग से सफलता को प्राप्त किया। यहां इंजीनियर को हॉल में चाल में बुद्धि श्रेष्ठ संकल्प करे और कर्म, कर्म जैसे वो श्रमिक है। कर्म कैसे हो? विचित्र, विचित्र स्वरूप दिखाओ, विशेष स्वरूप दिखाओ कर्म के। विचित्र स्वरूप कर्म का, विचित्र स्वरूप प्रत्यक्ष करो। तो यहां हॉल तैयार हो गया है, यहां चाल के साथ ये करो। और वो बातें अब आप बताओ जो हॉल में की जाती है, जो चाल के साथ करनी है, जो मुरली में नहीं बताई है। हॉल में क्या क्या किया जाता है सुशील भाई? डेकोरेशन। तो हॉल का डेकोरेशन किया जाता है इंटरनल, क्या कहते हैं, इंटरनल इंटीरियर, इंटीरियर। वैसे अब अपनी चाल के साथ करो। और क्या किया जाता है हॉल के साथ? लाइटिंग सिस्टम होती है, वैसे तुम्हारी चाल भी कैसी हो? ऐसी चमकीली, लाइट से भरपूर, जहां जाओ दूर से पता चल जाए, चलता फिरता ओम शांति भवन भव। और क्या किया है हॉल के साथ? सेटिंग किस चीज की, उसमें क्या क्या? स्टेज सेटिंग। तो वैसे अब अपने स्टेज की सेटिंग करो, अपने चाल की सेटिंग करो। और हॉल के साथ क्या क्या करते हैं? गुलदस्ते, फूल, डेकोरेशन, एसी, एसी कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए यहाँ पर चाल में। और ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में क्या करोगे चाल में? जैसा अगर वो गड़बड़ करे तो उसको ठीक कर दो। और एक चीज होती है वहां पर बहुत, साउंड सिस्टम, साउंड सिस्टम, ऑडियो सिस्टम, वो बराबर रहनी चाहिए। तो वैसे चाल की भी साउंड सिस्टम, कब कैसा आवाज निकालना है, कितना टोन होना चाहिए आवाज का, कब ज्यादा, ज्यादा नहीं, हमेशा कम। और कैमरा वो कंटिन्यूस लगा रहता है। अच्छा, सीसीटीवी, सिक्योरिटी। और हॉल में क्या? सीमा बहन, स्पीकर, साउंड में आ गया। क्या क्या? अच्छा अच्छा, स्लोगन वो सब लगे हुए रहने चाहिए। वैसे अपनी चाल में भी स्लोगन लगे हुए रहने चाहिए, पावरफुल, अच्छे अच्छे टीवी, स्लोगन और चेयर्स, डेकोरेशन, साउंड, स्टेज डिजाइन, मेंटेनेंस, वो भी बहुत जरूरी है। घड़ी, घड़ी भी रहनी चाहिए, तो चाल में भी घड़ी। तो कितनी सुंदर बात बाबा ने कही है, कितनी स्थूल बात है उसको अलौकिक बना दिया। जैसा उस हॉल का उद्घाटन किया है वैसे चाल का उद्घाटन कब करोगे? वैसे जैसे उसकी रिहर्सल करते हो वैसे इसकी रिहर्सल की है, प्रश्न पूछा है मुरली में। जो जो हॉल के साथ वो चाल के साथ करो। फिर बहुत सारे प्रश्न पूछे, ढेर सारे, स्टॉक जमा है, शक्तियों का स्टॉक जमा है, अब अंतिम आहुति दो सहयोग की। और एक सहयोग देने को कहा है यहाँ पर मुख्य रूप से मुरली में, कौन सा सहयोग देना है? वो राम भाई कौन सा सहयोग देना है? हरि भाई कौन सा सहयोग देना है? प्रकाश भाई सहयोग कौन सा देना है? दाता के बच्चे बन सहयोग दो, कौन सा सहयोग? संडे की पॉइंट बताओ। श्रद्धा बहन, अरविंद भाई, कमलेश भाई, मंजू बहन, श्याम भाई, नागेश भाई, क्या करो? सुनीता बहन, डॉक्टर महिमा, कौन सा सहयोग दो? अनुभव कराने का सहयोग दो। कहाँ से बता रहे हो, हफ्ते भर का या साल भर का? कौन सा सहयोग दो? बिगड़े हुए कर्म, बिगड़ा हुआ संस्कार, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से परिवर्तन करने का सहयोग दो। रोटी में माताओं की कमी है, रोटी बनाने आ जाओ, वो सहयोग नहीं चाहिए अभी। स्थूल सेवाधारी एक बुलाओ तो 10 आते हैं, 10 बुलाओ तो 100। बाबा को कौन से सेवाधारियों की आवश्यकता है? सूक्ष्म सेवाधारियों की ज्यादा आवश्यकता है। स्थूल सेवाधारी तो इतने हैं कि अभी कहना पड़ता है कि बस जगह नहीं है। यहाँ पर भी उदाहरण दिया बाबा ने, ऑलराउंडर सेवाधारी होती है, कहीं पर भी जगह खाली होती है तो फट से भर देते हैं, उदाहरण दिया है नहीं? तो बाबा को अभी वर्तमान समय कौन से सेवाधारियों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है? सूक्ष्म सेवाधारियों की ज्यादा आवश्यकता है, जिन्होंने अपनी स्थिति को सूक्ष्म बनाया है और जिन्होंने अपनी स्थिति को शक्तिशाली बना दिया है। ऐसे शक्तिशाली आत्माओं की बाबा को आवश्यकता है। अव्यक्त महावाक्य है, सर्वशक्तिवान बाप को मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे ही प्रत्यक्ष करेंगे। मीडिया का अपना स्थान है, मीडिया कर रहा है, परंतु सत्य इतना सस्ता भी नहीं है कि मीडिया में मिल जाए। परम सत्य के लिए परम तपस्या चाहिए और परम तपस्या करने वाले ऐसे जो है उन्हीं के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी। इस हॉल में 3000 और तुम त्रिमूर्ति, चाल में त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा समान क्या, विष्णु समान क्या, रुको अभी किसको पूछे, ब्रह्मा समान क्या, विष्णु समान क्या और शंकर समान क्या? ब्रह्मा समान कर्मयोगी, विष्णु समान प्रेम और शक्ति से पालना करने वाले और शंकर समान तपस्वी। ये मधुबन निवासियों की डबल जिम्मेवारी है, वातावरण को शक्तिशाली बनाना। उस दिन कुछ दिन पहले पांडव भवन में वो जहां मुरली लिखी जाती है वहां कुछ बहनें बैठी थी और वो उस दिन का मुरली का स्लोगन वरदान था ना, अगर तुम्हारी कोई ग्लानी करे तो उसके साथ क्या करो, फूल चढ़ाओ, ये करो वो करो। तो उन्होंने कहा देखो हमारी तो कोई ग्लानी करता ही नहीं, अब क्या करे। हमारी कोई ग्लानी नहीं करता है, हम कहां से फूल चढ़ाए। केवल ये सोच के खुश हो जाना कि देखो हमारा तो सब ठीक चल रहा है, हमारे किसी के साथ कोई पंगा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, हम अपनी सेवा करते अपने कमरे में आते सब ठीक चल रहा है, आज सारा दिन ठीक रहा, किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक चला। सेवा अमृत वेला कर लिया, योग कर लिया, सब कुछ ठीक किया, शाम का भी योग कर लिया, एक दो ग्रुप को समझा दिया, हमारा सब ठीक है। बाबा कह रहे वातावरण को शक्तिशाली बनाना, ये तुम्हारी डबल जिम्मेवारी है। सेवाधारियों से मुलाकात, तुम्हें यहाँ डबल पालना मिल रही है। सेवाधारियों से मुलाकात, तुम्हें यहाँ डबल सेवा करनी है। सेवाधारियों से मुलाकात, तुम्हें डबल कमाई करनी है। केवल अमृत वेला कर लिया, मुरली सुन ली, बाबा की याद में भोजन कर लिया, ट्रैफिक कंट्रोल कर लिया 4-5 बार, नुमा शाम का योग कर लिया, बीच बीच में बाबा को याद कर लिया, शाम को बैठे और मुरली की चर्चा कर ली, सुबह बैठे और थोड़े से महावाक्य सुन लिए, यहां पर चर्चा में डायरी लिखी, गुड नाइट किया और सो गए, इसे कहा जाता है साधारण पुरुषार्थ। वातावरण को शक्तिशाली बनाया क्या? बिगड़े हुए मूड, बिगड़े हुए संस्कार, बिगड़े हुए कर्म को अपनी शुभ भावना से ठीक करो, परिवर्तन करो, ये सहयोग दो। इसने ये किया, इसने ये कहा, ये दो शब्द है, इसने ये किया, इसने ये कहा। अब ये नहीं कहो क्या कहना चाहिए था, करके दिखाओ, आगे बढ़ के दिखाओ। सोच लिया, समझ लिया, जान लिया, परंतु जो करना चाहिए था वो नहीं किया, वो करो। ये सहयोग बाबा को चाहिए। ये सहयोग देना है, अर्थात संगठन में एकता, एकमत हो। यदि किसी में कोई कमी भी हो तो क्या कर दो, जैसे वो भरने का उदाहरण दिया है वैसे ऐसा सहयोग दे दो, ऐसे भर दो कि दूसरों को पता भी ना चले कि इसमें कमी है। ये बहुत ही हायर टीचिंग से, बहुत ऊंचे तल की ये सारी शिक्षा है। इसमें शायद बहुत अंदर ही अंदर सहन करना पड़े व्यक्ति को, शायद ऊपर से लगे कि ये कमजोर है। जो उस दिन पढ़ रहे थे ना, कब तक हम ही सहन करेंगे, कब तक दबते रहेंगे, ये दबना नहीं है, क्या है, सहनशाह बनना है। ये सहन नहीं करना है, सहनशाह बनना है, ये दबना नहीं है, परंतु भविष्य में वो आपके पैर दबाएंगे, वही इंतजार है। तो ये सहयोग देना है। कमियां, क्योंकि हर एक अलग अलग बैकग्राउंड से आया हुआ है, यहां पर भी या संसार में भी, जहां भी हम रहते हैं, जो लोगों के साथ रहते हैं, इतने भिन्न भिन्न संस्कार है सबके कि हम नहीं कह सकते कि सब एक जैसे ही हो। हर एक का खान पान अलग, कोई साउथ से आया, कोई नॉर्थ से आया, कोई कहां से, हर एक की भाषा, खान पान, रहन सहन, बचपन पता नहीं किसका कैसे गया है, घर में पता नहीं उनके माँ बाप के क्या झगड़े रोज वो देखते थे, किसी को मां नहीं, किसी को बाप नहीं, किसी को सब है परंतु प्यार नहीं। ऐसे सारे बैकग्राउंड से, पार्श्वभूमि से लोग यहां आए हैं इस यज्ञ में। अब ऐसे यहां आने के बाद सबके संस्कार अलग अलग है, एक ना मिले दूसरे से। जंगल की काठी, बाबा कहते हैं ना, कहां कहां से, किस किस जंगल से कौन कौन सी काठी आकर यहां आई है। तो क्या करो तुमको, सहयोग। कौन सा सहयोग? जो बिगड़ा है उसको शुभ भावना से ठीक करो, कहकर नहीं, कर दिखाओ, आगे बढ़कर दिखाओ, ये करो। मधुबन निवासियों से मुलाकात में बाबा ने यही बातें फिर से कही है। हिसाब किताब तो है, होगा, उसको खुशी खुशी से चुपतू करो। छोटी बात को बड़ा करना और बड़ी बात को छोटा करना किस पर निर्भर है? तुम्हारी बुद्धि पर। और एक चीज कही है, टकराने की, फिर से वही, उसी से संबंध जो पहले कहा था। जब तुम्हें पता है यहाँ खड्डा है, जब तुम्हें पता है यहाँ पर पहाड़ है, तो जाकर टकराओगे क्या उससे? तुम अब एक साथ आपस में रहते हो इतने समय से, एक दूसरे के संस्कारों को जान गए हो, पता है इसको ये कह दिया तो नाराज, ग्रुप से एग्जिट, क्लास में आना बंद, नेचुरल रिएक्शन। नाराज, उदास, संस्कार पता है। एक सूफी फकीर हुआ था कभी, फरीद, वो किसी गांव में गया, नया गया, नया उसको किसी ने घर दे दिया। फकीरों को तो लोग, गृहस्थी लोग बहुत कुछ कुछ देते रहते, तो आमंत्रण कहा आज से आप यहां रहो। तो वो वहां रहने लगा और देखा उसका जो पड़ोसी है, पड़ोस वाला जो व्यक्ति है, वो इतना झगड़ालू है, इतना भयंकर झगड़ालू है कि रोज कुछ ना कुछ उपद्रव, रोज कुछ ना कुछ झगड़ा, कुछ वो करता ही, वो कितनी बार सोचता है आज कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं करूंगा, फिर भी झगड़ा। इतना परेशान हो जाता है। वो तो था फकीर, सर्वस्व त्यागी, संसार को जिसने त्याग दिया, भगवान के प्रति सर्वस्व समर्पण और प्रेम उसके जीवन का सार है, सबसे प्रेम करना। परंतु देखा ये व्यक्ति, ये तो बहुत ही मुश्किल है, सब कुछ ट्राई कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं जो उसने नहीं किया, परंतु सब करने के बाद में भी हार गया। कहता है एक दिन सुबह सुबह उसने प्रार्थना में कभी उसने कुछ मांगा नहीं था भगवान से, तो एक दिन भगवान से कहता है, भगवान, अल्लाह से कहता है कि इसका कुछ कर, या तो इसको उठा ले या मुझे उठा ले। ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक जीवन में नहीं देखा, मैं कैसे इसके साथ रहूं, कैसे इसको सहन करूं। भगवान कहते हैं तुम 4 दिन में हार गए, मैं 40 साल से उसको सहन कर रहा हूं। ये मेरे पास इस धरती पर कब से है, 40 साल से मैं इसको मैं यहां मेरे पास रहा हुआ है, ये मेरी इस धरती पर रुका हुआ है, ठहरा है, मैं इसे 40 साल से सहन कर रहा हूं, तुम 4 दिन में हार गए। हम अभी अभी आए और देखा यहां पर गड़बड़ी गड़बड़ है, परंतु उसकी भी तो देख, सुनो उसका भी तो देखो, यज्ञ किसका है, उसका, कब से देख रहा है वो, उसने ही पाल पोस के रखा है उसको, सारी कमियां उसने अपने पेट में संभाली है उसकी और उसको चला रहा है। यदि किसी की भाई, किसी का भाई और किसी की बहन कोई ऐसी बीमारी हो जाए या अपंग हो, तो क्या करते हैं उसके साथ, छोड़ देते क्या उसको, क्या करते हैं फिर, उसको क्या करते हैं, संभालते हैं उसको, दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं है, कुरूप है, कुरूप है, तो क्या करते हैं, घृणा करते हैं, क्या करते हैं, फिर भी पालना करते हैं। हमारे पास एक छोटा सा बच्चा था 20 साल का, पर लगता नहीं था, लगता था 10 साल का, उसको शुगर की बीमारी थी, एकदम ऐसा ऐसा शुगर उसका 400, 600, 800 ऐसा रहता था। उसके माता पिता बहुत बहुत परेशान, मतलब परेशान तो थे अंदर से, परंतु सब कुछ करते थे उसके लिए। अभी अभी कुछ दिन पहले शरीर उसने छोड़ दिया, हर बार लेके आते थे बेहोशी की हालत में, तो कभी एकदम एक ऐसा था वो, उसका वजन हार्डली 20-25 किलो होगा, उम्र उसकी 20-21 साल थी, पर दिखता नहीं था, वो डायबिटीज ने, टाइप 1 डायबिटीज ने उसका पूरा शरीर खोखला कर दिया था, इंसुलिन के इतने हाई डोजेस, फिर भी कभी लो हो जाता था, कभी कुछ तो कभी कुछ, और कितने सालों से चल रहा था, फिर भी माँ बाप उसको हमेशा लेके आते थे, उसको वार्ड में रखते थे, दिन रात वहीं रहते थे, जागे रहते थे, सब कुछ उसका करना पड़ता था, बेड पर ही कितनी बार, तो उसको लूज मोशन हमेशा रहते थे, पर उसको छोड़ा नहीं, आखिर तक करते रहे। ये प्रभु परिवार है, इसका माय बाप वो है, हर एक को उसने पाल के रखा है। हम अभी अभी आ गए और कहे कि हे बाबा इसका कुछ करो। देखो आपकी बदनामी कर रहा है यज्ञ की, क्या उसे पता नहीं यज्ञ किसका है, तुम्हारा या उसका। He that planted the eye, shall he not see? He that planted the ear, shall he not hear? Bible में लिखा है, जिसने आंख दी क्या वो नहीं देखेगा, जिसने कान तुमको दिया वही नहीं सुनेगा। तो क्या करो यहां पर, अभी क्या कहा, कौन सी बात हम कर रहे थे, टकराने की, पता है स्वभाव, पता है संस्कार, पता है, तो क्या करो, टकराव नहीं, एक नई शक्ति के बारे में बाबा ने यहां चर्चा की है, सेफ्टी की शक्ति। शक्तियों की लिस्ट में इसको ऐड करो, एक सेफ्टी की शक्ति, किनारा कर लो, टकराव नहीं। क्या करो? सेवा से किनारा नहीं करना है। उस दिन हमने चर्चा भी की थी, बाबा दो शब्दों का प्रयोग करते, एक न्यारा एक किनारा। यहां किनारा करने की बात है, क्योंकि पता है यहां टकराव होगा, दो संस्कार टकराएंगे, दो शब्द टकराएंगे, संस्कार टकराएंगे, दो व्यक्ति टकराएंगे, दो शब्द टकराएंगे, टक्कर होती है, आग उत्पन्न होती है, फ्रिक्शन जब होगा इन दोनों में से किसी का भी, आग होगी, दोनों को जलाएगी। जयंती बहन ने एक बार कहा था कि 90% जो झगड़े होते हैं वो बोल के कारण नहीं, बोल का जो टोन है उस टोन के कारण होते हैं। किस टोन में कहा जा रहा है, वो टोन यदि ठीक है तो झगड़ा नहीं होगा, वही शब्द कहो पर वही टोन कहने का अगर चेंज हो जाए, शब्द वही है, फिर झगड़ा हो जाएगा। तो टक्कर नहीं होनी चाहिए, और टक्कर होने लगे तो क्या करो, झुक जाओ। झुकने में ही भलाई है, क्योंकि हमारी स्थिति है उसकी कीमत 1 करोड़ है। इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर। अहंकार की जो लड़ाई है उसमें जो जीतेगा वास्तव में उसकी हार है। इन द बैटल ऑफ ईगो द लूजर इज विनर एंड द विनर इज लूजर। यहां पे हम ये सिद्ध कर दे कि मैं राइट हूं, तुम रॉन्ग हो। मैंने जो कहा था देखा, मैंने पहले ही बोला था ऐसा नहीं करना है, फिर भी तुमने किया। अहंकार की तो जीत हो गई, परंतु स्थिति तो गई। स्थिति की कीमत 1 करोड़ है, उससे भी ज्यादा। स्थिति को नहीं गंवाना। शायद उस व्यक्ति के लिए योग इतना महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु हमारा तो गया, हम टकरा किसी से टकराए। शाम का योग, दूसरे दिन अमृत वेला भी वही घूम रहा है, और वो व्यक्ति दिख गया अगर सामने आके योग में बैठ गया तो बात मत पूछो फिर तो। जिससे झगड़ा हुआ वही सामने आके बैठेगा, क्योंकि झगड़ा भी तो यही होता है आसपास, और जिनसे होता है वही सुबह डाइनिंग में कहीं पे भी मिल जाएंगे चलते फिरते। तो सवेरे उठते योग कराने ही बैठ जाए सामने तो क्या करोगे। इसलिए टकराना नहीं है, बाबा ने कहा किनारा कर दो, सेव कर दो स्वयं को। आपका स्वयं को सेव करना, तुम उसको भी सेव कर रहे हो। जीत होने दो उसके अहंकार की, होने दो, अल्पकाल की जीत है वो भी, परंतु इसमें नहीं जाना है झगड़े में। और झगड़े जो होते हैं वास्तविक बहुत सारे बेबुनियाद, कुछ भी नहीं होता है। जैसे एक कोर्ट में 2 मुजरिम को खड़ा कर दिया गया और उनसे पूछा गया, बताओ क्या तुम्हारा अपराध है, तो वो एक कहता है तुम बताओ, वो कहते हैं तुम बताओ, बोलते मैं नहीं बता सकता, बोलते तुम बताओ, हमको शर्म आ रही है बताने में, बोलते बताओ, कोर्ट के वो जज कहता है बताओ, जल्दी बताओ क्या है तुम्हारा। तो वो कहता है देखो हम दोनों बहुत गहरे दोस्त है, जिगरी दोस्त, एक बार समुद्र तट पर बैठे थे और समुद्र तट पर बैठकर हम अपनी जीवन की बातें कर रहे थे, और फिर मैंने कहा कि मैं सोच रहा हूं कि एक खेत खरीद लूं। एक पहला कहता है अभी खरीदा नहीं है, सोच रहा हूं कि क्या करूं, खेत खरीद लेना चाहिए, वो कहता है। दूसरा कहता है मैं भी सोच रहा हूं कि एक भैंस को खरीद लूं। तो कहता है एक भैंस को तुम क्यों खरीद रहे हो, मैं खेत खरीद रहा हूं, तुम भैंस को मत खरीदना प्लीज। वो कहता है मैं क्यों, तुम क्यों खेत खरीद रहे हो, मैं भैंस को खरीदूंगा, मतलब देख लो अगर तुम्हारी भैंस मेरे खेत में आ गई ना तो देख लेना। तो बोलते अरे वाह अरे वाह, अब भैंस पे मेरा थोड़ी सा कंट्रोल है, वो कहां जाएगी जहां जाएगी मुझे क्या करना है, मैं थोड़ी उसको कैसे वश में करूंगा, तो जहां उसको जाना है जाएगी, तुम देख लेना तुम्हारी भैंस अगर मेरे खेत में आ गई तो हमारी दोस्ती खत्म। तो बोलती देखता हूं कैसे, तो वो रेत पर एक लकीर खींचते, ये है मेरा खेत और ये तुम्हारी भैंस। تو بولتا ہے اب دیکھتا ہوں کیسے آتی ہے اس لکیر کے اندر. تو وہ دوسرا کہتا ہے میں بھی دیکھتا ہوں کیسے نہیں جاتی, یہ لی میری بھینس اور گئی اندر. اور دونوں کا جھگڑا چالو ہو جاتا ہے, کون سا کھیت, کون سی بھینس, ابھی خریدی نہیں ہے, اور جھگڑا چالو ہو گیا. وہ کہتا ہے اس لیے ہم دونوں یہاں کھڑے ہیں, سارے جھگڑے ایسے ہی ہے. اہنکار کے کھیت اور اہنکار کی بحث. اہنکار ہی ہے کالپنک, سب کچھ اسی میں سب چل رہا ہے. تو بابا نے کہا ٹکراؤ نہیں, حساب کتاب چک تو کرو. خود ہلکا اگر رہو گے تو تم دوسروں کو بھی یہ انوبھو کراؤ گے, اپنے ہلکے پن کا ان کو بھی انوبھو کراؤ گے. تو ہلکا پن, پھر اس کے بعد میں سیوا دھاریوں سے ملاقات میں, اور بہت ساری باتیں بیچ بیچ میں ہم وہ سب جو آپ پڑھ لو اس کو جو پریکٹیکل والی اور پاورفل چیزیں ہیں انہیں کو اٹھا رہے ہیں وہاں سے. سیوا دھاریوں سے ملاقات میں نے کیا, کیا کرا, کیا کہتے ہیں, میں نے کیا. یہ دروازہ ہے میں کا, یہ دروازہ یدی کھلا تو کیا ہوگا, مایا آ جائے گی. یہ دروازہ یدی کھلا تو جو کچھ کیا وہ ختم, جو کچھ کیا وہ پانی میں چلا جائے گا. میں کر رہا ہوں, میں نے کیا. بابا نے کہا اس کو ہٹاؤ, وہ کرا رہا ہے نمت کرا, وہ کراون کرن کراون ہار وہ ہے. نمت بھاؤ لاؤ, نرمان بھاؤ کو لاؤ. یہ نہیں سوچو یہاں پر کوئی بھی سیوا اگر ہو رہی ہے تو میں نے کی. تم کون ہو کرنے والے, ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے, ہم کچھ کر رہے, سب کچھ وہ ہم سے کرا رہا ہے. اس کی دیا کرپا انوکمپا ہے. یہاں بیٹھ کر پرشارتھ کرنا یہ بھی اسی کی دیا ہے. اگر اس کی کرپا نہ ہوتی, دیا نہ ہوتی, انوکمپا نہ ہوتی تو ہم یہاں ہوتے ہی نہیں, گیان کا ایسا چنتن ہی نہیں کرتے, شاید اس سمے سو رہے ہوتے. امرت ویلے کے بعد نیند بھی بڑی اچھی آتی ہے. ہاں ساتوک نیند. اچھا تو یہ سمجھ لینا کہ بھگوان کی کرپا ہو رہی ہے. جب جیون میں پرشارتھ بڑھنے لگے سوتا ہی تو سب کچھ سہیوگی ہوتے جائے گا. جا پر کرپا رام کی ہوئی, تا پر کرپا سب کی ہوئی. مہان آتماؤں کا درشن ہونے لگے اور مہان آتماؤں کا جیون میں بار بار سنگ ملنے لگے تو سمجھ لینا یہ بھی بھگوان کی کرپا ہے. بنا ہری کرپا ملے نہیں سنتا, اس کی کرپا ہو رہی ہے. شریشٹھ اور تیور مہان پرشارتھیوں کا سنگ, شبد وچن یدی ہمیں سننے مل رہے تو وہ بھی پرماتما کرپا ہے. اس میں ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے, سب کچھ وہ ہے کرا رہا ہے. دھائی ویل شال بی ڈن. اس کے لیے میں نے کیا. بابا نے کہا اس کو نہیں لاؤ, کہیں پر بھی نہ لاؤ, ورنن نہیں کرو اس کا. ہماری ایک سیوا یہ بھی ہے, سیوا سماچار سنانا. ہمارے جو اگر براہمنوں کے جو بھاشن کلاسز ہیں ان کو اگر ڈیوائڈ کیا جائے تو بہت ساری شرینی ہے بھاشن کی. ایک شرینی ہے بھاشن کی کہ جس میں ہم سیوا سماچار سناتے ہیں. دوسرا بھاشن ہوتا ہے گیان میں کیسے آئے, سو کا انوبھو, گیان میں آنے کا انوبھو. یہ دوسرے پرکار کا بھاشن ہے. تیسرے پرکار کا بھاشن ہے دادیوں کے ساتھ کا انوبھو, بابا کے ساتھ کا انوبھو, بابا نے کہا کہ ہم کو مدد کی, وہ سنانا. چوتھا پرکار کا ہے مرلی ریویژن, مرلی ویسے کے ویسے ریوائز. پانچویں پرکار کا بھاشن ہے کوئی ایک ٹاپک پر, ٹاپک دیا گیا اس پر بولنا ہے. یہ ایک بھاشن. اور ایک جو کہا سیوا سماچار والا بھاشن, اس میں پھر سب سے زیادہ مایا ہے. سب سے پہلے تو میں کہاں کہاں گیا, پھر میں نے کیا کیا کیا, کہاں کہاں کلاس کرائے, اور اس کے یہ فوٹو 50 دیکھو بھیج دیے, ابھی تک دیکھے نہیں. وہ تو بابا لے گئے تھا کشمیر میں, میٹنگ کے لیے گئے تھے. घूमने थोड़ी गए थे, मीटिंग रिट्रीट जो भी है। तो वो जो सेवा समाचार है उसमें मैं बहुत ज्यादा आ सकता है। हमेशा मम्मा वाली वो बात याद रखना है, 3 मास बैंगलोर सेवा करके आई, सेवा कैसी थी, उत्तर क्या था, अच्छी थी, बहुत नहीं बस अच्छी, बहुत की क्या जरूरत, बहुत किसने बताया, मतलब कि उसका किसने ये निर्णय कौन करेगा बहुत अच्छी का वो तो उसका वो बताएगा कैसी थी, अच्छी थी फुल स्टॉप। वो करा रहा है, वो महाराष्ट्र में संत हुए है रामदास स्वामी। शिवाजी महाराज के जीवन में एक प्रसंग है कि दिखाया कभी एक बार शिवाजी को जैसे बहुत थोड़ा सा आंतरिक गर्व हुआ, व्यक्त नहीं किया, पर गुरु ने पकड़ लिया कि मैं छत्रपति और इतनी सारी प्रजा को इतनी अच्छे से चला रहा हूं, मेरी भी कमाल ही है अंदर ही अंदर, बगैर तो पता है नहीं तो गुरु ने पकड़ लिया ये ऐसा अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। तो उन्होंने कहा एक पत्थर को लेके आओ, तो एक बहुत बड़ा पत्थर बाउल्डर उसको लेके आए और उस पत्थर को तोड़ने को कहा। उस पत्थर को तोड़ा और पत्थर को जैसे ही तोड़ा उसमें से एक मेंढक निकल के बाहर आया। उस पत्थर के अंदर छोटा सा एक जगह थी जहां पर पानी था। तो उन्होंने पूछा राजन इसकी पालना कौन कर रहा था, तुम? ये पत्थर पूरा सब तरफ से बंद, उसके अंदर पानी था और वो मेंढक उसके अंदर जीवित था और वो बाहर निकला। पालना तुम नहीं कर रहे हो किसी की, वो कर रहा है। यहां किसी की पालना हम नहीं कर रहे हैं, वो कर रहा है। यहां जो जो आया है उसने लेकर आया है, वो करा रहा है सब कुछ। तो ये भी एक पावरफुल पॉइंट है यहां पर। तो सबसे पहले मधुबन की महिमा के बारे में बाबा ने कहा, मधुबन निवासियों से मुलाकात में कहा कि वो वरदानी भूमि पर हो तुम और इसलिए सर्व प्राप्ति स्वरूप हो, परंतु कमी की महसूसता अगर है तो असंतुष्ट रहेंगे। कमी की महसूसता, ये मेरे पास नहीं है, ये इसके पास है, इसके पास एक शॉल मेरे पास, इसके पास दो मेरे पास एक, इसका कमरा अच्छा मेरा अच्छा नहीं, इसको कुछ ज्यादा मिल रहा है मुझे कुछ कम मिल रहा है, कंपैरिजन, ईर्ष्या भी आएगी फिर सब होगा। इसकी सेवा अच्छी है, सेवा करो और चलो, हमको देखो 24 घंटे कभी भी बुला लेते हैं रास्ते में पकड़ लेते हैं। तो ये वाली बात। दूसरा बाबा ने कहा यहां अगर तुमको कुछ प्रॉब्लम आ गए तो खेल के जैसा है, संसार वालों को देखो यहां फिर भी तुम सिद्धि स्वरूप हो, तुम्हारे संकल्प सिद्ध हो रहे हैं, भले तुम अपने राज्य में नहीं हो फिर भी। और तुम सेवाधारियों से कहा ना, सेवा भी क्या करते हो यहां, कुछ हार्ड सेवा है क्या? सब कुछ मिला हुआ है, सब कुछ आसान है, यहां पर सब कुछ मिला है तुमको। इसके लिए तुम फल खाते हो, प्रत्यक्ष फल खाते हो, भाग्य प्राप्ति, सितारा चमक रहा है भाग्य का। तो चाहे मधुबन निवासियों से मुलाकात, चाहे सेवाधारियों से मुलाकात, यहां पर सारी मुरली में अगर देखा जाए तो 3-4 प्रैक्टिकल जो पॉइंट्स है वो, सबसे पहला सहयोग देने वाली पॉइंट, दूसरा टकराना नहीं है, और तीसरा ये अहंकार वाली पॉइंट, मैंने किया, ये भावना आए कहीं पर भी कोई भी चीज का, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा हो। हम तो निमित्त है, मुझे हमेशा, हम इसके पहले भी सुनाया था मोहम्मद रफी की वो बात, मोहम्मद रफी ने कहा है कि अगर खुदा चाहता तो ये आवाज किसी और को भी दे सकता था, कितनी बड़ी बात कह दी, पर उसने मेरे कंठ में डाली है ये आवाज, इसके लिए महानता मेरी नहीं है उसकी है। वो दूसरी बात है कि तुमने रियाज किया, तुमने अभ्यास किया, उसको निखारा, वो दूसरी बात है, परंतु दिया तो उसने है। चाहे कोई विशेषता हो, कोई कोई गुण हो, कोई स्पेशलिटी, कुछ भी हो, कोई विशेष सेवा अगर कोई कर रहा है, सारा कुछ जो भरा है हमारे अंदर उसने भरा है, सब कुछ गॉड गिफ्ट है, प्रभु प्रसाद है, ईश्वरीय देन है। इसके लिए काहे का अहंकार। यदि और एक दूसरी बात, अभी अभी मुरली भी चली थी, किसी और में वो सारा है, विशेषता है, और वो कोई व्यक्ति आगे जा रहा है, तो हमें उससे ईर्ष्या की आवश्यकता नहीं है, हम ये देखें कि हम भी कैसे वो सीखे, क्योंकि उसको भी तो उसी ने दिया है, उसके द्वारा बाबा कुछ कहला रहा है, उसके द्वारा प्रत्यक्षता हो रही है, तो हमें तो ये खुशी होनी चाहिए कि कितनी अच्छी बात है कि इतनों को संदेश उस आत्मा के द्वारा मिल गया। यदि हम ऐसा अगर रखें तो उसके साथ हमारे पुण्य, उसके पुण्य के साथ हमारे पुण्य जुड़ जाएंगे। पर अब ये हम सोचे कि इसने किया, मुझे भी अब मैं क्यों नहीं करूं, ये सेवा मुझे ही करनी है, तो शायद कहीं ना कहीं वो निगेटिविटी हमको नीचे गिराएगी। यदि हम अपने संकल्पों को उसके संकल्पों के साथ जोड़ दे तो वो जितनी पुण्य उस आत्मा को मिलेगा आपको भी मिलने लगेगा, क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस पॉजिटिव है। इसके लिए ईर्ष्या हो, ये क्या कहते हैं बाबा उसको, रीस, कंपटीशन, ये सब नहीं करना है हमको। हमारा लक्ष्य है संदेश सबको मिल जाए। अब वो किसके द्वारा मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, और जैसे तुम सेवा करते हो वैसे जरूरी नहीं है कि सब उसी तरह सेवा करे, सब अलग अलग रीति से सेवाएं करेंगे। और यहां वैरायटी, लोगों को भी वैरायटी चाहिए। संसार के जो लोग हैं, ऐसा नहीं कि तुम भाषण करते हो तो बस तुम्हारे भाषण ही उनको चाहिए, उनको तो बहुत कुछ चाहिए, उनको बहुत सारी चीजें चाहिए। तो संसार की आत्माओं की जरूरतें अलग अलग आत्मा, ब्राह्मण आत्मा द्वारा पूर्ण होगी। उनको जो ज्ञान में आने का मार्ग है वो अलग अलग होगा। हर एक नहीं कि कोई ज्ञान, कोई भगवान को ही ढूंढ रहा है और आ जाए, ऐसे नहीं है, बहुत कम है ऐसे। तो जिसके अंदर प्यास है ईश्वर को पाने की, ऐसे तो बहुत कम है। अलग अलग मार्ग से आएंगे, कोई भाषण सुनकर आएगा, कोई किसी प्रोग्राम में गया वहां आएगा, कोई शिविर, कोई प्रदर्शनी, अलग 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 रीति से आएगा। कोई खाने को देखकर आ जाएगा, उसको खाना खींचकर धीरे धीरे लाएगा। अलग अलग मार्ग है हर एक के आने के, और अलग अलग मार्ग सेवाओं के है, तो अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग आत्माएं निमित्त है। और सारी चीजें आप खुद ही नहीं कर सकते, एक ही व्यक्ति सारी सेवाएं नहीं कर सकता। कोई ये सोचे मैं ये भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं, वो भी करूं, तुमको जो दिया है ना बस उतना ही अच्छे से करो। वो एक बार सुनाया था, उतना कहकर क्लास को पूरा करते, तिलोपा जो था ना, बहुत बड़ा संत हुआ है, उसका नाम था तिलोपा। वो गुरु के आश्रम में पहुंचा तो उसने कहा आत्म साक्षात्कार, परमात्म साक्षात्कार करना है, खोज में आया हूं। तो गुरु ने कहा ठीक है जाओ, वो जो है ना तिल कुटते रहो, उसको वही काम दे दिया। उस आश्रम में हजारों शिष्य थे, सुबह उनकी क्लास होती थी ज्ञान योग की, हमारी भाषा में मतलब उनकी प्रवचन होते थे और कुछ होता था, डिस्कशन होता था, परंतु उसको एक ही काम दिया गया, तिल कुटते रहो बस। वो कितने साल तक, 30 साल तक तिल ही कुटता रहा, और कुछ उसने किया ही नहीं, कभी कमरे से बाहर भी नहीं निकला, वही तिल कुटना, वही सोना, वही सब कुछ करना बस। परंतु जब गुरु का वो टाइम आया कि अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना है तो उसी को किया गया, क्योंकि जितनी लगन से उसने सेवा की थी। भाषण करने वाले तो बहुत थे आश्रम में, तैयार भी हो गए थे नए, उनको नहीं बनाया, उसको बनाया। तिलोपा उसका नाम है, तिलरेपा, तिलोपा। तो जो भी सेवा दी गई है उसी को समग्रता से, कंप्लीट इंटीग्रिटी से करते रहना, चाहे वो कितना ही छोटा स्थान हो, वहीं से भगवान की प्रत्यक्षता होगी। बड़े बड़े भाषणों को सुनकर शायद कोई प्रभावित ना हो जाए, और मधुबन में ऐसे ही घूमने आए थे कॉन्फ्रेंस में, ज्ञान सरोवर में, मधुबन में घूमने आए, देखा एक भाई 20 साल से एक ही सेवा कर रहा है, बस उसको देखा और जीवन परिवर्तन हुआ। भाषण में क्या सुना पता ही नहीं, कुछ भी याद नहीं है, एक व्यक्ति को देखा बस, ये सेवा कर रहा है और जीवन बदल गया उसका। तो बताओ कौन सी सेवा बड़ी है फिर। इसके लिए जो अगर दूसरा भी कोई सेवा कर रहा है अच्छा है, हमें खुशी होनी चाहिए कि इसको आगे जाने दो, और आगे जाने दो, हम अपने आप को जोड़ ले उसके संकल्पों के साथ। अच्छा, ओम शांति।